द प्रिंट पॉट के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी आज आपको द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता का साप्ताहिक कॉलम नेशनल इंटरेस्ट पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें वे लिखते हैं कि महाराष्ट्र में चला सियासी खेल नैतिक और राजनीतिक से कहीं ज़्यादा वैचारिक है। वे लिखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो नाटकीय मोड़ आया है उसे मुख्यतः तीन खांचे में बांटा जा सकता है, नैतिक, राजनीतिक और वैचारिक। पहले हम नैतिकता वाले पहलू पर गौर करेंगे और सबसे अंत में विचारधारा वाले पहलू पर। पहले वाले पहलू पर कम ही समय और कम ही शब्द खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अंतिम पहलू पर सबसे ज़्यादा समय लगेगा। महाराष्ट्र में दल बदल के जरिए जो उथल पुथल की गई उससे जुड़ी नैतिकता के सवाल का आसानी से जवाब दिया जा सकता है। पहली बात यह है कि MVA सरकार का जन्म ही पाप में से हुआ था। शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर NCP कांग्रेस गठजोड़ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद वह विरोधियों के पाले में चली गई। यह दल बदल भी उतनी ही अनैतिक कुटिल व्यवहारिकतावादी राजनीति थी जितनी आज हुआ दल बदल है। जो भी हो, राजनीति में नैतिकता ढूंढना नादानी ही है। नैतिकता से निपटने के बाद हम राजनीति पर आते हैं। सत्ता हासिल करना एक बात है, मगर उसे कब्जे में रखना दूसरी बात। शिवसेना ने भाजपा से रिश्ता तोड़ने की जोरदार राजनीतिक चाल चलकर एक झटके में सत्ता हासिल कर ली। वह रिश्ता तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। भले ही उसके पास भाजपा के 105 विधायकों के मुकाबले लगभग आधे यानी कि 56 विधायक ही थे। भाजपा ने मना कर दिया तो UPA के पुराने घटकों की ओर मुड़ गए। उन्हें उद्धव ठाकरे को वह कुर्सी सौंपने में कोई मुश्किल नहीं थी, वैसे भी वह कुर्सी उनकी थी ही नहीं। शिवसेना उन्हें अपनी हार को जीत में बदलने का अप्रत्याशित उपहार दे रही थी। खोने को कुछ भी नहीं था। उनके साथ व्यवहारिकतावादी राजनीति के महारथी शरद पवार थे, जिन्होंने सशंकित कांग्रेस को कायल कर दिया। अब अगर हम 2.5 वर्ष पीछे जाकर मीडिया को खंगाले तो पाएंगे कि लगभग सभी प्रेक्षकों, पंडितों और विश्लेषकों ने यही भविष्यवाणी की थी कि यह सरकार अस्थिर और अल्पजीवी होगी। पहली बात तो सच नहीं हुई, सरकार स्थिर थी और एकजुट थी। हाँ, वह अल्पजीवी साबित हुई। तब मेरा विचार था कि कांग्रेस ही तीन टांग वाली इस कुर्सी को गिरा देगी, क्योंकि कभी न कभी वह शिवसेना की हिंदुत्ववादी राजनीति से खींच जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना था कि गिराने का काम NCP करेगी, क्योंकि वह अस्थिर प्रवृत्ति की और सत्ता की खातिर विचारधारा से समझौता करने वाली मानी जाती है। तब जितने लोगों को मैंने पढ़ा या सुना था उनमें से किसी ने यह संदेह नहीं जाहिर किया था कि यह सरकार शिवसेना के दल बदल या विभाजन के कारण गिर जाएगी। लेकिन इस मामले में दोनों बातें हुईं। इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? हमारी राजनीति का सर्वमान्य तर्क यह है कि सत्ता सबसे मजबूत चोड़ वाला फेविकॉल है। ऐसा कैसे हुआ कि अपनी पार्टी, सरकार, पुलिस और खुफिया तंत्र पर पूरी पकड़ होने के बावजूद ठाकरे कुनबा यह नहीं जान पाया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है? राजनीतिक हलकों में अब यह सबको मालूम है और भाजपा के वकील सांसद महेश जेठमलानी ने हमारी सहकर्मी ज्योति मल्होत्रा से इस इंटरव्यू में इसकी पुष्टि कर दी कि उनकी पार्टी 2 साल से ज़्यादा समय से शिंदे से गुप्त रूप से संपर्क बनाए हुए थी। अगर ठाकरे कुनबे को इसकी भनक तक नहीं लगी तो यह अविश्वसनीय राजनीतिक अक्षमता का परिचय देता है। एक जोरदार चाल आपको सबसे शक्तिशाली से भी सत्ता छीनने में सफल बना सकती है, लेकिन सत्ता को अपने कब्जे में रखने के लिए अटूट सतर्कता और चतुरता की ज़रूरत होती है। इस मामले में ठाकरे कुनबा बदतर साबित हुआ। यह हमें विचारधारा वाले पहलू पर ले जाता है। एकनाथ शिंदे और उनके साथी कहते हैं कि वे वैचारिक शुद्धता की खातिर अलग हुए। ठाकरे ने विश्वासघात किया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका दावा है कि भाजपा की बाहों में जाकर वे अपने वास्तविक अस्तित्व के अधिक करीब पहुँच गए हैं। इससे दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो यह कि 2019 में संबंध विच्छेद से पहले भाजपा और शिवसेना के बीच कितनी वैचारिक समरसता और द्वंद्वहीनता थी। दूसरा, शिवसेना की विचारधारा वास्तव में क्या है? यहाँ भी पहले सवाल का जवाब आसान है। करीब एक दशक से बालासाहेब के निधन यानी 17 नवंबर 2012 और राष्ट्रीय मंच पर नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से उद्धव यह चिंता करते रहे हैं कि उनकी वैचारिक जमीन धीरे धीरे भाजपा के कब्जे में जा रही है। वे खींच जाहिर करते रहे हैं कि बाला साहब ने शुद्ध महाराष्ट्रवाद से हिंदूवाद की ओर मुड़कर शायद गलती की। मराठा मानुष के मंच पर मोदी समेत कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। आखिर उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बनना था, लेकिन हिंदुत्व के मंच पर आगे चलकर मोदी शिवसेना से ज़्यादा प्रभावी नजर आएंगे। उद्धव बिल्कुल सही थे। कई चुनावों से यह साफ हो चुका है कि हिंदू वोट शिवसेना से भाजपा की ओर खिसक रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय पार्टी ने बहुत छोटे आकार में जूनियर पार्टी के रूप में शुरुआत की थी और अब वह छलांग मारकर आगे निकल गई है और 2019 में संख्या बल में उससे दोगुनी बड़ी हो गई है। चेतावनी की घंटी बज रही थी और उद्धव ने पासा पलटने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। गहरे हिंदुत्व की ओर बढ़ने की जगह उन्होंने सेक्युलर खेमे में सत्ता, शांति और समय खरीदने की कोशिश की। यह उन्हें हिंदुत्व से और भी दूर ले गया। यह हमें दूसरे पहलू पर लाता है कि आखिर शिवसेना की विचारधारा क्या है। हम कह सकते हैं कि यह उग्र क्षेत्रीयतावाद और निर्मम हिंदुत्व का सुविधाजनक मेल है। पहला, उग्र क्षेत्रीयतावाद जो है वह हर समय चलता रहता है। अक्सर मराठी छोड़ दूसरी भाषाओं के साइन बोर्डों पर कालिक पोतने से लेकर बुद्धिजीवियों पर हमलों के विकृत रूप में सामने आता रहता है। दूसरा, धुर और अक्सर हिंसक हिंदुत्व मौके के मुताबिक अपना सिर उठाता है, जैसे 1992 और 93 के दंगों में उसने उठाया था। लेकिन बाला साहब तो ऐसे थे कि अभिनेता संजय दत्त का खुला समर्थन भी कर सकते थे, जिन्हें अपने घर में घातक हथियार रखने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीनियर ठाकरे कुछ भी कर सकते थे, वे किसी भी तरफ झुक सकते थे, कभी कभी घंटे भर में इधर से उधर भी जा सकते थे। वे नहीं चाहते थे कि ठाकरे कुनबा औपचारिक सत्ता हासिल करे, तो इसकी भी कुछ वजह थी। वे अगर किंग नहीं बनने वाले थे तो केवल किंग मेकर भी नहीं रहना चाहते थे, वे एक डॉन थे और नेपोलियन की तरह उनका मानना था कि सिंहासन तो महज एक फर्नीचर है। 2001 में एक शनिवार रात मेरा फ़ोन बजा था और फ़ोन करने वाले ने कहा कि बाला साहेब बात करना चाहते हैं। मुझे तुरंत ध्यान आ गया कि उस सुबह छपे अपने स्तंभ में मैंने उन्हें माफियोसो यानी माफिया गुट का कहा था। मैंने खुद को अपनी लानत मलामत के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वे तो बड़े प्यार से कह रहे थे, जितने लोग मुझे गालियाँ देते हैं उनमें तुम सबसे दिलचस्प तरीके से लिखते हो। और बात पर वजन देने के लिए उन्होंने जोड़ा, उस राजदीप सरदेसाई से अलग हटकर। मैं मानता हूँ कि वे राजदीप को फ़ोन करके मेरे बारे में इससे भी बुरी बात कह सकते थे। मैंने उनसे पूछा, अगर आपको मेरा लेखन इतना दिलचस्प लगता है तो आप मेरे लिए क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने मुझे मुंबई में डिनर के लिए बुलाया और कहा कि अपनी पत्नी को भी साथ लाना। यह भी पूछा कि क्या हम मीट खाते हैं और शराब पीते हैं। मैंने सबके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना मैं केवल वाइट वाइन पीता और पिलाता हूँ। रेड वाइन दिल के लिए अच्छी होती है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं एक हृदय विहीन आदमी हूँ। वह डिनर मातोश्री में हुई। तब ज़्यादा बातचीत सुरेश प्रभु, जो उस समय वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, के बारे में हुई कि वे कितने अक्षम या बेईमान हैं कि पार्टी के लिए पैसा बनाने में अपनी अक्षमता जताते रहे हैं। राजनीतिक नेताओं में पैसे को लेकर जो पाखंड आप देखते हैं, वैसा कुछ उनकी बातचीत में नहीं था। उनके दो पोते उनके कमरे में उछल कूद कर रहे थे। मेरे ख्याल से उनमें एक आदित्य ठाकरे रहे होंगे, जो WWF की टी शर्ट में थे, जिस पर उस समय के एक मशहूर गंजे पहलवान की फ़ोटो बनी हुई थी। बाला साहेब ने उनसे कहा था, अरे तुम यह प्रतीश नंदी की शर्ट क्यों पहने हुए हो? मैंने उनसे कहा था, आप प्रतीश के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे तो आपकी पार्टी के ही सांसद हैं। यही तो मुश्किल है, मेरे से राज्यसभा ले ली, लेकिन कभी मुझे नहीं बताया कि वह ईसाई है, वरना मैं उसे कभी नहीं देता। यह सब बाद में 2007 में उनके 80वें जन्मदिन पर NDTV के कार्यक्रम वॉक द टॉक में हुई बातचीत में रिकॉर्ड हुआ। उस बातचीत के दौरान दीवार पर एक शेर और माइकल जैक्सन की तस्वीर के नीचे हम दोनों के हाथों में वाइट वाइन के गिलास के साथ ली गई फ़ोटो मेरे प्रिय संग्रह में शुमार है। मैं उन्हें वापस पैसे और राजनीति के मुद्दे पर लाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभु की शिकायत प्रमोद महाजन से कर दी थी कि वे पार्टी के लिए पैसे नहीं ला रहे हैं। महाजन ने उनसे कहा था कि अगर कोई मंत्री कहता है कि मंत्री के रूप में पैसा बनाना संभव नहीं है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या अयोग्य है। उनकी बातचीत में कहीं कोई हिचक नहीं थी। वे सत्ता के नकदीकरण की कला जानते थे। सच कहें तो शिवसेना की असली विचारधारा यही थी, जबरन वसूली नहीं तो सुरक्षा फीस यानी कि प्रोटेक्शन मनी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी को इससे अलग कर दिया। आप सत्ता संभालते हुए इस तरह का विशाल निजी ऑपरेशन नहीं चला सकते। उस विचारधारा से कट जाना भी एकनाथ शिंदे के सैनिकों को नागवार गुजर रहा होगा। द प्रिंट पॉट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।